चिंतन करना हमारा स्वभाव है, है ना। चैतन्य हम हैं, उनकी निशानी है हम सोचते हैं। जड़ चीजें सोच नहीं सकती, हम सोचते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। ये निशानियां हैं कि हम चैतन्य हैं, आत्मा है। तो चिंतन करना हमारा स्वभाव है, पर सत्य ज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या सोचना है। हमें अपने मन का उपयोग किस चिंतन में करना चाहिए। सबसे अनमोल शक्ति विचार शक्ति है ना। सारी दुनिया व्यक्ति के मन की रचना है, समझ रहे हैं? सारा विश्व व्यक्ति के मन की रचना है। देखिए, अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, इसको बने 20 साल हुआ, 20 साल हुआ, 20 साल के कुछ महीनों पूर्व ये हॉल कहां था? कहां था? हाँ, उसके कुछ महीनों पूर्व ये हॉल कागज पर नक्शे के रूप में था, और उसके कुछ पूर्व दिनों ये हॉल कोई व्यक्ति के मन में था, एक आइडिया के रूप में, एक योजना के रूप में व्यक्ति के मन में था। इस हिसाब से आप देखिए, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, कुदरत ने 5 तत्व दिए, पर 5 तत्व से हमने करोड़ों अरबों चीजें बनाई। वो कहां बनती है? पहले मन में, मन में आइडिया आता है। तो मन कितनी अनमोल शक्ति है, विचार शक्ति सबसे पावरफुल है। अब आप खुद को ऑब्जर्व करिए, अब तक हमने इस मन का उपयोग कौन से चिंतन में किया? अब तक हमने मन का अधिक उपयोग किस चिंतन में किया? अक्सर कौन सी बातें आप सोचते रहते हैं? वही नौकरी, धंधा, समाज, शरीर, संबंध, परिवार, वही बातें सोचते रहते हैं। हमने मन का उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही अधिक किया है, और उसी का रिजल्ट है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यही है कि वही विचार हमें बार बार आते रहते हैं, है ना। घूम फिर के वही विचार बार बार हमें आते रहते हैं, क्योंकि हमने अब तक वही बातें सोची है। आप देखिए, पर चिंतन कैसे करें? कभी ऐसा प्रश्न हुआ आपको? हुआ? हाँ? पर चिंतन सीखने के लिए कोई प्रोग्राम में आप गए? हाँ? आता है? हर एक को पर चिंतन करना आता है? आता है? हाँ? आता है कि नहीं आता? आता है ना? बल्कि पर चिंतन करने में एक्सपर्ट है, वो हम सीखने नहीं गए। कैसे करें ये प्रश्न नहीं हुआ। और जब हम कहते हैं कि अब मन को आत्म चिंतन में लगाओ, परमात्म चिंतन में लगाओ, शुभ चिंतन में लगाओ, तो लोग सोचते हैं कैसे करें। वो सीखने के लिए खास आपको यहां शिविर में आना पड़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि अब तक हम खुद को शरीर समझते रहे, इसलिए शरीर भान में रहे तो शरीर संबंध, संसार, प्रवृत्ति, परिवार, वही चीजें हम सोचते रहे। इसलिए अब हमें परिवर्तन करना है, अब हमें परिवर्तन करना है, अब हमें अपने मन को स्वचिंतन, परमात्म चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में लगाना है। तो एक तो ये अभ्यास हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से फिर वो इजी हो जाएगा, सहज और नेचुरल बन जाएगा। हमें अपने आप पर अटेंशन देना है कि बेशक जो जरूरी है वो बातें हमें सोचनी है, हा? नौकरी के लिए, धंधे के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, शरीर के लिए जो आवश्यक है वो हमें सोचना है, उसकी कोई मना नहीं है। लेकिन आप अपने आप को चेक करिए, क्या हम आवश्यक ही सोचते हैं? हाँ? क्या हम सिर्फ आवश्यक ही सोचते हैं या अनावश्यक, बिगर मतलब की, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं? क्या करते? सोचते रहते हैं, सिर्फ आवश्यक नहीं सोचते हैं, अनावश्यक व्यर्थ भी सोचते रहते हैं। इसलिए एनर्जी खत्म होती है, मन कमजोर बनता है। देखो, आप अनावश्यक बोल बोल करेंगे तो थकेंगे, आपके शब्दों में शक्ति नहीं रहेगी, आपके शब्दों की वैल्यू नहीं रहेगी। आप अनावश्यक दौड़ते रहेंगे तो फिजिकली थकेंगे ना। तो हम मन से क्या कर रहे हैं? अनावश्यक सोचते रहते, है ना, बिगर मतलब सोचते रहते। और सोचते बहुत कुछ है और करते फिर कुछ नहीं है, तो वो सब क्या हुआ? क्या हुआ? वेस्ट। वो वेस्ट हो गया। सोचा बहुत कुछ और किया कुछ नहीं तो वो वेस्ट हो गए। तो देख रहे हैं कि कैसे आत्मा की शक्ति वेस्ट होती है, इसलिए आत्मा में शक्ति नहीं रहती। और फिर रिजल्ट क्या आता है, जो नहीं सोचना चाहिए वो बार बार सोचते रहेंगे, जो सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उस पर चिंतन नहीं चलता है, है ना ऐसा कि जो नहीं सोचना चाहिए वो विचार बार बार आते रहते, और जिस पर चिंतन करना चाहिए उस पर हम फोकस नहीं हो पाते हैं, सोच नहीं पाते। ये हमारी मनोस्थिति बन गई है। आपस में मिलते हैं, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते हैं, उसमें समय की कोई सीमा नहीं रहती है ना। तब तो क्या कहते हैं कि अरे बातें करते 2 घंटे बीत गए पता भी नहीं चला, ऐसे बोलते हैं ना। देर रात तक बातें करते हैं उसमें किसी को नींद नहीं आती। यहां हम 5-10 मिनट आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन में बिठाते हैं तो लोग सो जाते हैं, सो जाते हैं। आप देखना आसपास, लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है, या परेशान हो जाते हैं, घड़ी देखते रहते हैं कि कब लाल लाइट से सफेद लाइट हो जाए, वो राह देखते रहते हैं। क्योंकि हमें सुबह के बारे में सोचने का अभ्यास ही नहीं। कितनी आश्चर्य की बात, क्योंकि सुबह को जानते नहीं, इसलिए सुबह के बारे में सोचने का अभ्यास नहीं है। दूसरा, शक्ति नहीं है इसलिए नहीं सोचना चाहिए, वो बार बार सोचते रहते। नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं और फिर सॉरी करते रहते हैं, फिर कहेंगे मेरे मुख से निकल गया। भई ऐसे कैसे निकल गया, मन में आया तब तो मुख से निकला। कई बोल देते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने ऐसे ही बोला, हाँ मन पर नहीं लेना, मैंने ऐसे ही बोला। तो ऐसे क्यों बोला, क्यों बोला, वेस्ट हुआ ना। मन में बात आई तब तो मुख से ऐसी बात निकली, और जहां बोलना चाहिए, कोई अच्छा कार्य करके आते हैं, खुशी जाहिर करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तो वहां बोल नहीं पाते क्योंकि इतना अंदर संकुचित होते हैं, जो उनकी सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो मुख से 2 अच्छे शब्द भी नहीं बोल पाते। तो जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलना चाहिए वो बोल बोल करते हैं, है कि नहीं ऐसा। जिस दिन वो व्यक्ति घर में नहीं होंगे, लगेगा आज फैक्ट्री बंद है, जरा भी आवाज नहीं है, इतना बोल बोल करते। जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। समझते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, चाहते भी हैं राइट ही करें, रॉन्ग नहीं ही करें, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं है, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए वो बार बार करते रहते हैं। सिद्ध है आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं रहा है, जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। कोई कुछ गुस्सा करता है, अपमान करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई महिमा करते हैं खुश हो जाते हैं। हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिए। अब आप बताइए, घर में नया टीवी ले आते हैं तो उसका रिमोट कंट्रोल पड़ोसी को दे आते हो क्या? हाँ? कि भाई आप जो दिखाना चाहो वो हमें दिखाओ, ऐसा करते हैं? हाँ? नहीं। घर का हर सभ्य चाहेगा कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो ताकि मैं जो देखना चाहूं वो देख सको, और जीवन का रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों को दे दिए, दूसरों को दे दिए। उसने ऐसा बोला इसलिए गुस्सा आ गए, उसने दो बोला तब मैंने चार बोला, सब ऐसे करते हैं इसलिए हम भी ऐसे करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया है। तो योग वो अभ्यास है जिससे सेल्फ कंट्रोलिंग पावर आता है। हम अपनी बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं जो मन को भी कंट्रोल कर सके और संस्कारों पर भी कंट्रोल रहे। आदत कहते हैं ना, संस्कार माना हैबिट्स, आदत। आदत ऐसी है, हैबिट ऐसी है, वश हो जाते हैं। इसलिए राजयोग की आवश्यकता है। जैसे शरीर को फिजिकली हेल्दी रहना जरूरी है, फिजिकली फिट एंड फाइन रहने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पर खुद को, आत्मा को, मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। और आज सारी बीमारियां, सारे प्रॉब्लम मन के कारण है। मेडिकल साइंस कहता है 80% बीमारियां मानसिक कारणों से शरीर में होती है, साइकोसोमेटिक डिसीज उसे कहते हैं। मानसिक कारणों से शारीरिक बीमारियां हो रही, 80% बीमारियां मानसिक कारणों से हो रही। ऐसे में आप बताइए, मन को शक्तिशाली बनाना ज्यादा जरूरी है कि शरीर को शक्तिशाली बनाना ज्यादा जरूरी है? मन को। और उस का एक्सरसाइज राजयोग है। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, इसमें कोई आसन प्राणायाम की हठ क्रियाएं नहीं है। आपको अपनी सहज स्थिति में बैठना है, फिजिकली रिलैक्स होकर बैठना है। कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए। लेकिन जब भी योग अभ्यास करने बैठे, मन से अटेंटिव होकर बैठना है, मन से अटेंटिव होकर बैठना है कि ये 10 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा मैं परमात्मा मिलन के लिए बैठी हूं, परमात्मा स्मृति के लिए बैठी। मोबाइल यूज करते हैं तो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज मोबाइल ऐसे ही रख देने से अपने आप रिचार्ज नहीं होता है। हमें पावर पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है। सेम आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज है, ऐसे ही चलते रहने से, जीते रहने से वो रिचार्ज नहीं हो जाते। हमें उस अल्टीमेट पावर पॉइंट परमात्मा से खुद को कनेक्ट करना है। मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़नी है, तो इसमें शारीरिक क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं, मन का अटेंशन चाहिए। जब भी आप योग अभ्यास करने बैठेंगे, लक्ष्य पूर्वक बैठे कि ये आधा घंटा मैं परमात्मा चिंतन के लिए बैठी हूं, परमात्मा का चिंतन करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनको याद करना है, इस लक्ष्य से बैठे। दूसरा, इसमें कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है, न रटना है, न जपना है, ना ही इसमें मुख से कुछ भी गाना बजाना, आवाज नहीं करना है। हम अपना मन बुद्धि सहज परमात्मा में नहीं लगा सके तो भक्ति में हमने विभिन्न प्रयास किए। किसी ने कहा माला फेरो, मन लगता है देखो, तो हमने माला फेरना शुरू किया। किसी ने बताया सहज मन नहीं लगता है तो नाम रटो, तो हम मंत्र रटने लगे। कोई ने कहा चलो मुख से गाओ, तो हमने गाना बजाना शुरू किया। ये हमारे भक्ति में विभिन्न प्रयास थे। समय प्रति समय जो भी धर्मात्मा, महात्मा, अध्यात्म पुरुष, योगी, ऋषि, संत आए, उन्होंने ये सजेस्ट किए कि इस प्रकार करके देखिए। पर अब हमें अपने इन अभ्यासों को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट तो यही है कि माला फेरते रहते हैं और मन भी फिरता रहता है। मंत्र रटते रहते हैं और मन भी भटकता रहता है। इसलिए राजयोग में न माला फेरनी है, न मंत्र रटना है और न ही मुख से कोई आवाज करना है। हम भक्ति में माइक लगाकर रात रात जोर जोर से भजन गाते हैं, आवाज करते रहते हैं, लेकिन सत्यता क्या है? मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है, क्योंकि परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं। वहां मुख का आवाज नहीं जाता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज उनको पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए राजयोग में हम साइलेंस में बैठते हैं, मुख से आवाज नहीं करते और ना ही इसमें कोई मूर्ति चित्र फोटो का भी आधार नहीं है। भक्ति में हम मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, फोटो रखते हैं और फिर भी मन भटकता रहता है। मंदिर में खड़े हैं, मूर्ति के सामने हैं और मन में दूसरी ही मूरतें घूम रही है। तो सबसे पहला राजयोग में कोई चित्र मूर्ति फोटो का आधार नहीं। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से योग लगाना है। हमें परमात्मा के चित्र से, मूर्ति से, फोटो से योग नहीं लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है। और आप जानते हैं अब परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। वो हमारे जैसा शरीरधारी नहीं है। वो तो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमें मन की आंख से देखना है, बुद्धि से याद करना है। परमात्मा इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से विजुअलाइज करना है। इसलिए यहां जो भी चित्र है, फोटो है या जिन भी सेवा केंद्रों से आप आए हैं, हर सेवा केंद्र में ज्ञान के अनेक चित्र लगे हुए हैं। वो ज्ञान समझाने के लिए है। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना है। वो तो ज्ञान समझाने के लिए। ये जो पॉइंट ऑफ लाइट का सिंबल है, आप जहां रहते हैं आपके कमरों में भी लगा है पॉइंट ऑफ लाइट का रेड सिंबल, वो समझाने के लिए। परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, ये समझाने के लिए हमें इस प्रतीक से योग नहीं लगाना है, हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी इस हॉल में आप सूर्य चंद्र नहीं देख रहे, पर जैसे ही मैंने सूर्य चंद्र ये शब्द बोला, आप सबने क्या किया, क्या किया? मन की आंख से देखा, ज्ञान नेत्र से देखा, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में। अब हमारी बुद्धि में परमात्मा का सही ज्ञान है, हमें मन की आंख से परमात्मा के दिव्य ज्योति स्वरूप को देखना है और उससे याद करना है, चिंतन करना है, हमें उनसे प्यार करना है, बातचीत करनी है, उस याद में प्यार में एकाग्र होना, उससे योग कहते हैं, उससे योग कहते हैं। तो राजयोग कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, इसमें कोई क्रियाकांड नहीं, कोई साधन नहीं, हर कोई योगी बन सकता है। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है, हमें घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र योगी बनना है, इतना सहज है। न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है, हाँ, कोई भगवे पहन लेने से या सफेद पहन लेने से कोई योगी नहीं बन जाता है। ये हमारा यूनिफॉर्म है, इसलिए हम पहनते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर विद्यालय का अपना यूनिफॉर्म होता है, ये हमारा यूनिफॉर्म। हम फुल टाइम सेवा में हैं, इसलिए हम फुल टाइम पहनते हैं। बाकी आप जैसे भाई बहने क्लास में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो पहनते हैं, पर केवल सफेद ड्रेस पहनने से योगी नहीं बन जाते, हाँ, हमें ड्रेस नहीं बदलना है, हमें आंतरिक दिल बदलना है, वृत्ति बदलनी है, स्मृति बदलनी है, चिंतन बदलना है, हमें स्थान नहीं बदलना है। कई मेहमान हमें कहते हैं, बहन जी हम भी यहां रह जाएं, हमें भी जाने का मन नहीं कर रहा, यहां रहने की जरूरत नहीं है, हमें इस ज्ञान और योग को साथ ले जाने की जरूरत है। तो हम जहां रहते हैं वहां रहते भी योगी बन सकते हैं, हा? स्थान नहीं, आत्मस्थिति बदलना।